Namah Siddhesya Om Namah Siddhesya Om Namah Siddhesya Om Shuddhatmane Namah Namo Arihantanam Namo Siddhanam Mangalam Bhagavan Viro Mangalam Gautamo Gani Mangalam Kunda Kundaryo Jaina Dharmo Sumangalam Atma Gyanam Swayam Gyanam Gyana Danyat Karotikim Parabhavasya kartatma mohoyam vyavaharinam agyanatimirandhanam jnananjaneshalakaya chakshurunmilitam yena tasmai shri gurave namah nami unajinam viram Anantavaranadam sanasahavam Vochaminiyam asaram Kevali sudakevali vanidam
ये प्रवचन रत्न चिंतामणि जो नियम सार के ऊपर पूज्य श्री गुरुदेव जी के प्रवचन है उसमें हम पेज नंबर 51 पर आए थे. गाथा 38 समाप्त हो चुकी है हमारी प्रवचन उसके पढ़कर. आज गाथा 39 चलेगी. कहेंगे पहले गाथा प्राकृत में फिर संस्कृत. यहाँ संस्कृत है. हाँ.
नो खल सहावठाना नो मानव मान भावठाना वा नो हरिसभावठाना नो जीवस्य हरिसठाना वा न खलु स्वभावस्थानानि न मानापमानभावस्थानानि वा न हर्षभावस्थानानि न जीवस्य हर्षस्थानानि वा जीवने तथा न स्वभावना मानापमानतणान् हि जीवने न स्थानो हर्षनास्थानो अहर्षतणान् हि जीवने न स्थान स्वभावना स्थानो हर्षनास्थानो अहर्षतणानि
अन्वयार्थ जीवस्य इतले जीव ने खलु खरेखर न स्वभाव स्थानानि स्वभाव स्थानो इतले विभाव स्वभावना स्थानो नथी. स्वभाव तो एक ही है. स्थान यानी अलग अलग जीवों के जो अलग अलग विभाव हो गए उसकी अपेक्षा से हम विभाव स्थानों कहेंगे. जैसे सुबह अपना स्थान समुत्कीर्ण अधिकार चल रहा है ना. बंध के स्थान किसको कितना बंध होता है. मिथ्या तो गुणस्थान में कितने प्रकृति बनती है. दूसरे गुणस्थान में कितनी बंधेगी. तीसरे में कितनी बंधेगी. तो उसकी संख्या अलग अलग होती है तो उसको अलग अलग स्थान कहने में आता है. वैसे स्वभाव में कोई स्थान नहीं कि किसी को ज्ञान है किसी को दर्शन है. ऐसे तो कोई स्थान होगे नहीं. तो ये स्वभाव स्थान है नहीं. जो विभाव वाले जो है तो ब्रैकेट में क्या लिखा है, विभाव स्वभावना स्थानो नथी। क्रोध के परिणाम किसी को तीव्र है, किसी को मंद है, किसी को मध्यम है, तो उसको हम वो उसके स्थान कहेंगे, वो जीव को नहीं है। यानी जीव के स्वभाव में जिसको हम यहाँ जीव कह रहे हैं, परम पारिणामिक भाव को हमने यहाँ जीव कहा है, स्वतत्व कहा है, तो उसमें हमने तो चारों जो भाव है पर्याय रूप भाव उसको भी नहीं कहा था। अब यहाँ अलग अलग स्थानों नहीं ऐसी बात कहे गए, तो विभाव स्वभाव स्थानों जीव ने नथी। न मानापमान भाव स्थाना निवा, मान अपमान भावना स्थानो नथी। न हर्ष भाव स्थानानी, और हर्ष भावना स्थानो नथी। हर्ष शोक के जो विविध प्रकार है, विविध उसमें जो डिग्री होगी, वे स्थान भी जीव के नहीं है। वा न अहर्ष स्थानानी, अहर्षना स्थानो नथी। शोक के स्थान जीव को नहीं है। तो यहाँ कौन से जीव की बात चल रही है? तो आ निर्विकल्प तत्वना स्वरूप नु कथन छे। जे निर्विकल्प छे तेमा न हर्षना स्थान है, न अहर्षना ने शोकना स्थान है, और न कोई विभाव भाव है, और न कोई मानापमान है उसमें। हर्ष और शोक सुख तो निराकुलता रूप सुख कहने में आता है, और यहाँ जो हर्ष की बात है,
यहाँ जो लौकिक हर्ष शोक हम कहते हैं ना, सुख दुख, लौकिक सुख दुख, उसकी बात ली है। विवाह स्थान है ना, यहाँ जो हर्ष यानी जो हम अभी हमको बहुत पैसा मिल गया, या हमारे मन की इच्छा के अनुसार अपना कोई कार्य हो गया, तो हम उसको हम हर्ष मानते हैं। और अपने विरुद्ध कोई बातें हो गई, अरे कल तो क्लास नहीं है, बहुत लोग हर्षित हो गए, या कोई दुखी हो गए, तो वह हर्ष शोक के स्थान वह त्रिकाली जीव में नहीं है। वो तो अतीन्द्रिय है ना,
अतीन्द्रिय
सुख है, वो तो अतीन्द्रिय सुख यह जीव का स्वभाव भाव है। तो ये जो नहीं है उसकी बात चल रही है। तो हम तो इन पर्याय रूप जो कोई बातें हो रही उसी को अपना स्वभाव मान रहे, इसलिए यहाँ शुद्ध भाव अधिकार चल रहा है ना। तो कह रहे हैं कि ये जो बातें जो पर्यायात्मक जो है वो है नहीं, किसमें, मेरे में, ये पुस्तक में नहीं, या तो जिनेंद्र भगवान में, अरे उनके तो है ही नहीं, मेरा स्वभाव भी ऐसा है। ऐसा सब बातें अपने पे घटित करना। आगो
ये हर्ष है नहीं, जो लौकिक कोई उपलब्धि होती है, अभी क्रिकेट की मैच जीती, या कोई वो टेनिस खेल रहा है और वो जीतता है, तो क्या कैसे करता है, वहाँ नाचते कूदते जो कुछ करते, वो हर्ष हुआ। और जो हार गया वो शोक हुआ उसको, ये हर्ष शोक के परिणाम है। और जो सुख कहते हैं वो तो आत्मा का स्वभाव है, अतीन्द्रिय सुख ही सच्चा सुख है। और जिसको हम लौकिक में सुख दुख मानते हैं, हर्ष शोक मानते हैं, वो तो संयोग वियोग के कारण है। तो देखो आ निर्विकल्प तत्वना स्वरूप नु कथन छे। तो जीव कहते ये निर्विकल्प तत्व की ये नियम सार चल रहा है अभी यहाँ। निर्विकल्प यानी उसमें तो विकारी और अविकारी पर्यायों से रहित ऐसा जो शुद्ध भाव है, त्रिकाली शुद्ध भाव, पर्याय रूप शुद्ध भाव नहीं, त्रिकाली ध्रुव रूप जो शुद्ध भाव है, परम पारिणामिक भाव जिसको कहा है, उसकी यहाँ चर्चा चल रही है। तो त्रिकाल निरूपाधि जैन स्वरूप छे, उसमें कोई उपाधि नहीं है। संयोग में शरीर है, कर्म है, कर्म का उदय है, और उदय का फल भी होगा। परंतु यहाँ बात जो त्रिकाल निरूपाधि स्वरूप है, अपने स्वरूप में ना कर्म है ना कोई है, ना बंधा है और ना मुक्त होगा वो। तो बंध और मोक्ष से रहित ऐसा जो परम पारिणामिक भाव है, उसकी यहाँ चर्चा चल रही है। इसलिए निरुपाधि, उपाधि से रहित, कोई उपाधि नहीं है ना कर्म की ना और किसी। तो त्रिकाल निरुपाधि जनु स्वरूप छे, यानी भूत संसार अवस्था में भी निरुपाधि, मोक्ष मार्ग में साधक अवस्था में भी निरुपाधि तत्व है, और मोक्ष प्राप्त होने पर भी निरुपाधि है। ऐसा जो त्रिकाल निरुपाधि जो तत्व है जेनु स्वरूप छे, એવા શુદ્ધ જીવાસ્તિકાયને ખરેખર વિભાવ સ્વભાવ સ્થાનો એટલે વિભાવરૂપ સ્વભાવના સ્થાનો નથી. એ વિભાવરૂપ કો ભી સ્વભાવ કહાયા, ક્યોંકિ યે જો રાગ દ્વેષ રૂપ વિભાવ હોતે હૈ વો જીવ દ્રવ્ય મેં હોગે કે પુદગલ મેં હોગે કે ધર્મ દ્રવ્ય મેં હોગે કે અધર્મ મેં હોગે જીવ મેં, તો જીવ મેં હી એસી યોગ્યતા હૈ વિભાવરૂપ હોને કી, ઇસલિયે વિભાવ સ્વભાવ કહાવા. જૈસે પાણી કા સ્વભાવ તો શીતલ હૈ પરંતુ ઉષ્ણ રૂપ પરિણમને કી યોગ્યતા પાણી મેં હૈ, તો વો ઉસકા અનિયત સ્વભાવ ભી કહેતે ઉસકો, ઉસકો વિભાવ સ્વભાવ ભી કહેંગે, પર્યાય સ્વભાવ હૈ વો. પર્યાય મેં વિશિષ્ટ રૂપ હોને કી યોગ્યતા હૈ, ઉસ દ્રવ્ય કી એસી યોગ્યતા હૈ. જૈસે લકડી હૈ તો હમ કહેતે ના યે તો ઉષ્ણતા કા વાહક નહીં હૈ, યાને ઉસમેં ગરમ નહીં હોતી. અબ લકડી કો પકડ કર આગે જ્વાલા કરે તો પીછે હાથ મેં નહીં લગતી, ઓર કોઈ લોહે કી તાર લે લો યા લોહા લે લો તો વો ગરમ હોગા, તો વો ભી ગરમ હોગા ના વહાં, તો એસી ઉસકી અપની અપની અલગ અલગ યોગ્યતા હૈ. વૈસે શુદ્ધ જીવાસ્તી કાયને ખરેખર નિશ્ચય સે વિભાવ સ્થાનો નથી, ક્યોંકિ હમ પર્યાય માત્ર સે ઉસકો પર્યાય માત્ર કો ગૌણ કરકે અકેલે શુદ્ધ સ્વભાવ કો દેખ રહે હૈ, તો ઉસમે હમે વો દિખાઈ નહીં દે રહે. શુદ્ધ સ્વભાવ કી દ્રષ્ટિ સે હમ જિસ દ્રષ્ટિ સે દ્રવ્ય કી ઓર દેખ રહે હૈ ઉસ દ્રષ્ટિ મેં યે વિભાવ દિખતે હી નહીં હૈ. શુદ્ધ જીવાસ્તિકાયને પ્રશસ્ત કે અપ્રશસ્ત સમસ્ત મોહરાગ દ્વેષનો અભાવ હોવાથી, મોહરાગ દ્વેષ ભી પ્રશસ્ત હોતે હોંગે. હા બોલો. હા, દેવશાસ્ત્ર ગુરુ કે પ્રતિ જો રાગ હૈ ઓર દેવશાસ્ત્ર કે ઉપર જો ઉપસર્ગ કરને વાલે કે પ્રતિ જો કુછ વો પ્રતિકાર કરને કી ભાવના હોગી ના, દ્વેષ હોગ્યો ના વહાં, ઉસ ટાઈપ કા દ્વેષ, તો વો કૈસા હોગા? પ્રશસ્ત. ઓર મોહ મેં વહાં વો ચારિત્ર મોહ મેં ભી લેના ઉસમે, તો યે જો પ્રશસ્ત મોહરાગ દ્વેષ ઓર અપ્રશસ્ત મોહરાગ દ્વેષ યાને મિથ્યાત્વ ઓર જો સાંસારિક પ્રયોજન કે લીએ જો રાગ દ્વેષ હોતે હૈ, સ્ત્રી પુત્ર પરિવાર યા ઓર જો કુછ હૈ વો સારા અપ્રશસ્ત મોહરાગ દ્વેષ, તો પ્રશસ્ત ઓર અપ્રશસ્ત મોહરાગ દ્વેષનો અભાવ હોવાથી માન અપમાનના હેતુભૂત કર્મોદયના સ્થાનો નથી. યે અભાવ કિસમે હૈ? ત્રિકાલ નિરૂપાધિ સ્વભાવ મેં ઇસકા અભાવ હૈ. કેવલ જ્ઞાની જીવ કો અભાવ હુઆ ઉસકી બાત નહીં યહાં ચલ રહી હૈ, અભી વર્તમાન મેં હૈ ઉસકી બાત ચલ રહી, પર્યાય મેં હૈ, ત્રિકાલ નિરૂપાધિ સ્વભાવ મેં નહીં હૈ ઉસમે ઉસકા અભાવ હૈ. ખ્યાલ આતા ના? પર્યાય મેં મિથ્યાત્વ હોતે હુએ ભી ત્રિકાલ નિરૂપાધિ સ્વભાવ મેં વો હૈ નહીં, ઉસકી દ્રષ્ટિ કરની હૈ, ક્યોંકિ મિથ્યાત્વી જીવ હી મિથ્યાત્વ કા અભાવ કરકે સમ્ય દ્રષ્ટિ હોગા, તો કૈસે હોગા? તો યે ત્રિકાલ નિરૂપાધિ અપને સ્વભાવ કી પહેલે તો ઉસકો શાસ્ત્ર મેં સે પહેચાન હોગી, ફિર ઉસકા વિશ્વાસ હોગા ઓર ફિર ઉસકો હી જાનતે રહેગા, ઉસકા સ્વરૂપ પહેચાન કર ઉસકા લક્ષણ ભી જાનેગા, તબ ઉસકો ઉસકા અનુભવ હોગા. તો કહેતે ઉસ ત્રિકાલ નિરૂપાધિ મેં મોહરાગ દ્વેષ કા અભાવ હૈ, इसलिए वो त्रिकाल जो निरुपाधि स्वभाव है वो मान अपमान ना हेतुभूत कर्मोदय ना स्थानो नथी. कर्म के उदय के कारण मान और अपमान के जो प्रसंग बनते हैं वो स्थान जो है वैसे जो बातें होती है वो त्रिकाली स्वभाव में नहीं है. शुद्ध जीवास्तिकाय ने શુભ પરિણતિનો અભાવ હોવાથી શુભ કર્મ નથી. દેખો અભી એક એક કે ઉપર સે દૂસરી સાયકલ બતા રહે હો. પહેલે મેં પહેલે શુદ્ધ જીવાસ્તિકાય લિયા જો ત્રિકાળ નિરૂપાધિ જો હૈ પરમ પારિણામિક ભાવ, અબ ઉસમે કૌન સી પરિણતિ હૈ, શુભ હૈ કે અશુભ હૈ? કોઈ નહીં હૈ, પરિણતિ માત્ર થી રહિત હૈ વો. તો શુભ પહેલે શુભ કો લિયા ફિર અશુભ કો બતાયેંગે, તો ઉસમે શુભ પરિણતિ હૈ નહીં હૈ, ઉસકા અભાવ હૈ, ઇસલિયે શુભ કર્મ નથી. क्योंकि शुभ परिणति के निमित्त से शुभ कर्म बंधेगा। त्रिकाली स्वभाव में शुभ परिणति ही नहीं है तो त्रिकाली स्वभाव को शुभ कर्म भी नहीं बंधेगा। शुभ या अशुभ परिणति त्रिकाली में नहीं है तो त्रिकाली को कर्म बंध होगा क्या? तो मोक्ष तो होगा ना। जिसको बंध ही नहीं होगा उसका छूटने का सवाल ही नहीं है। इन्हें वो त्रिकाल बंध से मुक्त ही है, यानी बंध हुआ ही नहीं है उसको, अबंध है, अबंध स्वरूपी है वो, अबद्ध स्पृष्ट कहते ना उसको। तो शुभ परिणति नो अभाव हुआ थी शुभ कर्म न थी, और शुभ कर्म नो अभाव हुआ थी संसार सुख न थी। देखो हम कह रहे शुभ परिणाम के कारण शुभ कर्म बनते हैं, और शुभ कर्म के उदय में जो फल मिलता है उसमें संसार का सुख जिसको हम कहते वो मिलता है। तो यहाँ शुभ परिणति ही नहीं है त्रिकाली स्वभाव में, तो शुभ कर्म को बंधने का भी सवाल नहीं है। तो जो बंध है वो स्वभाव में नहीं है, बंध नहीं है ऐसा नहीं कहा, वो बंध त्रिकाल स्वभाव में नहीं है, और उसके कारण से मिलने वाला संसार सुख जो है वो भी स्वभाव में नहीं है। संसार सुख नो अभाव हुआ थी हर्ष स्थानो न थी, ये बात आई ना। ये हर्ष हमको कब होता है? ये सांसारिक सुख मिलते तो हर्षित हो जाते, पैसा ज्यादा मिला, कुछ कपड़े मिले, गहने मिले, और जो कोई विशिष्ट संयोग मिले, पुत्र हुआ तो हर्ष हुआ। तो संसार सुख ही त्रिकाली में नहीं है तो हर्ष का कोई सवाल ही नहीं हुआ। वरी अब अशुभ परिणति पर घटाएंगे। वरी शुद्ध जीवा सिखाए ने अशुभ परिणति नो अभाव हुआ थी अशुभ कर्म न थी। जो कुछ अशुभ परिणति के कारण जो कर्म है वो त्रिकाली में नहीं है, उसमें उसका अभाव है। अशुभ कर्म नो अभाव हुआ थी दुख न थी, और दुख नो अभाव हुआ थी अहर्ष स्थानो न थी, यानी शोक के स्थान नहीं है। ख्याल है ना ये? क्यों? क्योंकि उसके शुभ और अशुभ जो परिणति है वो ये है नहीं उसमें, तो उसके फलस्वरूप जो कर्म का बंध, फिर उसका फल, और उसमें जो हर्ष शोक के परिणाम, वो कुछ भी नहीं है। अब आगे इसके प्रवचन पढ़ते हैं। पेज नंबर 52 पर गाथा 39 ऊपर नु प्रवचन। आ निर्विकल्प तत्वना स्वरूप नु कथन छे, आ कथन छे। तो कथन कोनु छे? निर्विकल्प तत्वना स्वरूप नु कथन छे। 38मी गाथा मा जेने आत्मा कयो तो तेनु ज आ कथन छे। आ नियम, ये नियम सार का आत्मा है कि हमारा तुम्हारा है, अपना है देखो अभी देवगा राजा में कोई हिंदू आए थे भाई वहां प्रवचन में, और एक दिन हमारी तत्व चर्चा चली थी तो प्रश्न पूछा था, वहां लिखा था शुद्ध चैतन्य। तो चैतन्य भी शुद्ध और अशुद्ध ऐसे अलग अलग प्रकार का होगा। तो अभी जो जिस आत्मा की हम बात कर रहे हैं, त्रिकाली शुद्ध निर्विकल्प निरुपाधि तत्व, उसको आत्मा कहा है। तो रागी द्वेषी भी आत्मा होगा, है ना वीर? क्रोधी हम नहीं कहते, ये क्रोधी जीव है। हम जब शुद्ध चैतन्य और अशुद्ध चैतन्य की बात करेंगे तो आत्मा तो अलग अलग, हम जीव कहते हैं तो ये क्रोधी जीव है, ये मिथ्या दृष्टि जीव है, ये समय दृष्टि जीव है, ये मुनि जीव है, अलग अलग है ना, पर्याय के अपेक्षा से उसका हम वर्णन करते हैं। तो वहां शुद्ध अशुद्ध सभी बातें बनेगी, क्योंकि पर्याय का आरोप पूरे द्रव्य पर किया। अब यहां कौन सी बात चल रही है? परम पारिणामिक शुद्ध, वो तो हमेशा ही शुद्ध होगा। पर्याय में अशुद्धता होते हुए भी वो हमेशा शुद्ध ही है, शुद्ध भाव कहा उसको, परिणति रूप शुद्ध भाव नहीं, स्वभाव रूप शुद्ध भाव, जिसके लक्ष्य करने से पर्याय भी शुद्ध हो जाएगी। सम्यक दर्शन रूपी शुद्ध पर्याय कब प्रकटेगी? जब ये त्रिकाली जो शुद्ध भाव है उसका जब लक्ष्य होगा, उस पर जब अपना ज्ञान की पर्याय केंद्रित हो जाएगी, एकाग्र हो जाएगी, उसी में कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, तब पर्याय में भी स्वभाव भाव ये शुद्ध भाव प्रकट होगा। किसका लक्ष्य करने से? ये शुद्ध भाव को, त्रिकाली जो शुद्ध है, जो त्रिकाल शुद्ध है, उसको जानते रहने से पर्याय में भी शुद्ध भाव प्रकट होगा, मगर ये शुद्ध परिणति कहलाएगी। और वो जो है वो त्रिकाल शुद्ध है, उसका लक्ष्य करेंगे तब पर्याय में प्रकट होगा। तो यहां जो उसको आत्मा कहा है, तेनु जा कथन छे, जिसकी बात अभी 38वीं गाथा में हुई थी उसी की बात अभी यहां आगे चल रही है। एटले के अगाऊ कहू हतू एज कथन नहीं, यहां बीजी रीते कहे छे, क्योंकि यह जीव ऐसा है, अलग 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 रीति से समझाएंगे तो कुछ समझेगा शायद। तो आचार्यों की करुणा है कि वो अलग अलग रीति से हमें ये बातें समझाएं। शुद्ध भाव कहो, निर्विकल्प तत्व कहो, कारण परमात्मा कहो के कारण जीव कहो, एक अच्छे। हम तो ये सारी बातें पहले पहले से देखते आ रहे हैं ना, इसमें कारण परमात्मा की बात हुई थी हमारी, कारण शुद्ध पर्याय की भी बात हुई थी। अब यहाँ उसी को निर्विकल्प तत्व कहकर पुकार रहे, त्रिकाली जो ध्रुवज्ञायक भाव है, सहज शुद्ध पारिणामिक भाव कहा था ना, सहज शुद्ध परम पारिणामिक भाव, इस गाथा में बात की थी अभी। गाथा 39 थी, गाथा 45 सुधी में 49 बोल कहा छे, अने ते आत्मा मा भेद नथी तेना सूचक छे, माटे अहीं थी 1, 2, 3 एम नंबर आप्या छे। त्रिकाल निरुपाधि जेनु स्वरूप छे। अभी ये जो 49 बोल है उसमें इसी के विशेषण होंगे, इसी को समझाया है, इसी का स्वरूप समझाने के लिए अलग अलग बोल इसमें लिखे हैं। क्या कहते हैं? एक, त्रिकाल निरुपाधि जेनु स्वरूप छे, भगवान आत्मानु त्रिकाल निरुपाधि स्वरूप छे, तेनु स्वरूप ज निरुपाधि छे, तेमा उपाधि छे नहीं। ऐसा नहीं कि पहले उपाधि थी और बाद में निकल गई, ऐसा नहीं है। कर्म की उपाधि थी और अभी कर्म का अभाव हुआ तब जो प्रकटेगा उसको तो हम क्षायिक भाव कहेंगे। और ये कैसा भाव है? अनादि से निरुपाधि तत्व है, बिना उपाधि वाला तत्व है, उपाधि कभी इसमें हुई नहीं है। एवा शुद्ध जीवास्तिकाय ने जोयू, एवा शुद्ध जीव ने एम न कहता, क्या कहा इसमें? हाँ, शुद्ध जीवास्तिकाय, एवा शुद्ध जीवास्तिकाय ने एम कहू छे, केम के जीव अस्थि छे ने काय पण छे। अस्थि कब से है जीव की? अनादि से। और काय कब से है? अनादि से। काय क्यों कहा उसको? असंख्यात प्रदेशी। और काय वाले कौन कौन से द्रव्य है आप जानते? तमें जयबेन खबर छे तमने? काय वाले कौन कौन से? अस्थि काय जिसको हम कहते हैं। नहीं, पहले यहाँ अपना शास्त्र पढ़ते थे ना, इसके पहले। हाँ, पंचास्तिकाय। तो 5 द्रव्य अस्तिकाय है। हाँ, वेरी गुड, काल द्रव्य। क्योंकि जो एक प्रदेशी है उसको काय नहीं कहेंगे, अस्थि तो है उसकी, उसकी भी अस्थि अनादि से है, परंतु कायत्व किसे कहते हैं? बहुप्रदेशी जो द्रव्य है उसको कहेंगे ये काय वाले द्रव्य है। पुद्गल है तो एक प्रदेशी, परंतु उसमें बहुप्रदेशी होने की योग्यता है, और वो बार बार वो बहुप्रदेशी एक प्रदेशी होते रहते हैं, उसमें स्कंद रूप होने की योग्यता है, इसलिए उसको भी काय में ले लिया। इसलिए पंचास्तिकाय में जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश को लिया। और काल द्रव्य अस्थि तो है परंतु उसमें कायत्व नहीं है। और ये जो जीव के असंख्यात प्रदेश है वो कायम उतने की उतने रहने वाले, उसमें कोई कम अधिक नहीं होते। तो क्या कहते? तो शुद्ध जीव ने ऐसा नहीं कहकर एवा शुद्ध जीवास्तिकाय ने एम कहू छे, केम के जीव अस्थि छे ने काय पण छे, असंख्य प्रदेशी छे। સર્વજ્ઞ ભગવાન સિવાય અસંખ્ય પ્રદેશી આત્માની વાત કોઈ મતમાં છે નહીં. દેખો, આત્મા અસંખ્યાત પ્રદેશી છે એ સર્વજ્ઞ કે બિના ઓર કિસી કો પતા નહીં હૈ. હમે પતા હૈ કે નહીં? ક્યોંકિ હમ સર્વજ્ઞ કે મત વાલે હૈ. સર્વજ્ઞ ને જો પ્રત્યક્ષ જાનકર બતાયા હૈ વો હમ જાન રહે હૈ. તો ઇસલિયે સર્વજ્ઞ કે મત આત્માની વાત કોઈ મતમાં છે નહીં, એસા કહા. સર્વજ્ઞ કે બિના ઓર કોઈ જાનતા નહીં, એસા નહીં કહા. સર્વજ્ઞ કે મત વાલે વો સારે જાનતે હૈ. જો જૈની હૈ સર્વજ્ઞ કો માનતે હૈ, ઓર સર્વજ્ઞ ને જૈસે છ દ્રવ્ય કહે ઓર જીવ દ્રવ્ય અસંખ્યાત પ્રદેશી કહા હૈ, તો આત્મા મેં અસંખ્યાત પ્રદેશ હૈ એક એક જીવ મેં. એ સર્વજ્ઞ ભગવાન ને પ્રત્યક્ષ જાનકર બતાએ હૈ ઓર હમ ઉનકે વાણી કે અનુસાર હમ આગમ સે જાનતે હૈ. યે હમારા જ્ઞાન ભી સત્ય હૈ, પ્રમાણ જ્ઞાન હૈ, ક્યોંકિ ઇસકો આગમ પ્રમાણ કહા જાતા હૈ. ક્યોંકિ સર્વજ્ઞ ને સુની દેખી હુઈ એને જાની હુઈ બાત ઇસમે લિખી હુઈ. અસંખ્ય પ્રદેશ એ આત્માનો દેશ છે, એ હમારી વાસ્તુ હૈ. એ આજકલ વાસ્તુશાસ્ત્ર કા ફેડ હૈ ના. તો હમ જિસમે વસતે હૈ, કિસમે વસતે હૈ? અપને અસંખ્યાત પ્રદેશો મેં. હમ આકાશ દ્રવ્ય મેં રહેતે હૈ, એક સારે હી દ્રવ્ય આકાશ મેં રહેતે હૈ, યે કહેના તો ઉપચાર કથન હૈ, વ્યવહાર કથન હૈ. તો વાસ્તવ મેં પ્રત્યેક દ્રવ્ય અપને અપને પ્રદેશો મેં રહેતા હૈ. તો જીવ અસંખ્યાત પ્રદેશી હૈ, તો હમ અપને અપને સ્વક્ષેત્ર મેં યાની અપને અસંખ્યાત પ્રદેશો મેં રહેતે હૈ. તો યે ઉસકા દેશ હૈ. અહીંયા દ્રવ્યની વાત છે એટલે કહે છે કે ત્રિકાળ નિરૂપાધિજનો સ્વરૂપ છે, પર્યાયમાં ઉપાધિ છે, એ રાગ દ્વેષ રૂપ છે અને એ તો પર્યાયમાં રહી. દ્રવ્યમાં એ ઉપાધિ ક્યાં છે? ક્યોંકિ પર્યાય કા લક્ષ્ય છોડકર ત્રિકાળ નિરૂપાધિ તત્વ કા હમ લક્ષ્ય કરતે હૈ, તો ઉસમે યે તો પર્યાય કી કોઈ વાત ઉસમે હૈ હી નહીં. એવા શુદ્ધ જીવાસ્તિકાયને, શુદ્ધ એટલે પવિત્ર, જીવ એટલે જીવ, ઓર અસ્થિ એટલે છે, કા એટલે પ્રદેશોનો સમૂહ. શુદ્ધ જીવાસ્તિ કાય કહા ને, શુદ્ધ જીવ અસ્થિ ઓર કાય, એક એક કા અર્થ બતાયા. જીવાસ્તિ કાય એટલે જીવ અસંખ્ય પ્રદેશના સમૂહરૂપ અસ્તિત્વ વાળો છે. એસે કોઈ જુદે જુદે ટુકડે નહીં ઉસમે અંદર, પરંતુ જીવ કે પ્રદેશ કિતને હૈ તો યે અસંખ્યાત પ્રદેશ હૈ. પુદગલ પરમાણુ જીતની જગે રોકતા હૈ ઉતના એક પ્રદેશ હમ ગિનતે હૈ. યા વો મંદ ગતિ સે ગમન કરે તો એક સમય મેં કિતના ગમન કરતા હૈ તો એક પ્રદેશ, તો ઉસકો પ્રદેશ કહા હૈ યા. હા કેવલી, હા નહીં નહીં નહીં. દેખો મેં એસા બતાયા કે પ્રત્યેક જીવ શુદ્ધ જીવાસ્તિકાય હૈ. અભી જો એક એક જીવ મેં અસંખ્યાત પ્રદેશ હૈ વો કિસને જાને?
નહીં નહીં, ઉનકા પ્રશ્ન એસા હૈ કે કેવલી ભગવાન ઓર શુદ્ધ જીવાસ્તિકાય ઇસમે આપ કૈસા ડિફરન્શિએટ કરેંગે? યહી વાત હૈ ને? બાત તો એસી હૈ કે પ્રત્યેક દ્રવ્ય શુદ્ધ જીવાસ્તિકાય સ્વભાવ સે હૈ, ઓર કેવલી ભગવાન ને વો સ્વભાવ અપને સ્વરૂપ પર્યાય મેં પ્રકટ કિયા હૈ, ઓર હમ ભી કેવલી હો સકતે હૈ. અભી હમ ભી સ્વયં શુદ્ધ જીવાસ્તિકાય સ્વરૂપ સે સ્વભાવ સે અભી હૈ, જો હૈ વહી વ્યક્ત હોગા, જો નહીં હૈ વો કહાં સે આયેગા? ક્યોંકિ હમ તો અપને સ્વચતુષ્ટય સે બહાર જા નહીં સકતે, ના કોઈ બહાર કી વસ્તુ સ્વચતુષ્ટય મેં આ સકતી હૈ. જૈસા સ્વરૂપ હૈ કબ સે? અનાદિ સે હૈ, વહ વ્યક્ત હોગા. તો કેવલી ભગવાન જો હૈ ઉનકા કાર્ય હો ગયા, જો શુદ્ધપના જો થા સ્વભાવ મેં વો પર્યાય મેં ઉને પ્રકટ હુઆ હૈ, એસા લેના.
યે જો શુદ્ધ જીવાસ્તિકાય જો હૈ વો હરેક કી બાત હૈ, ક્યોંકિ હરેક કા અપના અપના ત્રિકાલ શુદ્ધ નિરૂપાધિ ભાવ હૈ, परम पारिणामिक भाव है, तो केवल ज्ञानी हुआ तो भी उसका वैसा ही शुद्ध रहा। अंतर कहाँ आया? पर्याय में। पर्याय जो अशुद्ध थी वो शुद्ध हुई, परंतु ये त्रिकाली में ना शुद्ध पर्याय है ना अशुद्ध पर्याय, ना आश्रव बंध की पर्याय ही नहीं है। पर्याय तो है ना, द्रव्य में है। देखो देखो, अभी सोना इसको हम मानते हैं, अभी ये उदाहरण के लिए सोने का कोई गहना, सोने की बंगड़ी है, उसमें डिजाइन है, उसमें जो कुछ उसके जो कोई शेप वगैरह है वो, अभी उस सब का हम लक्ष्य छोड़ देते हैं और सोना इस दृष्टि से देखते हैं। तो जब सोना की दृष्टि से देखते हैं तो कौन सा डिजाइन दिख रहा है? कोई डिजाइन नहीं दिख रहा उसमें। तो उस दृष्टि में, सोने की दृष्टि में, सोना में कोई डिजाइन है? परंतु जो वस्तु एक है, अभी इसको हम देख रहे हैं, ये सोने की बंगड़ी, तो वहां बंगड़ी है कि नहीं है? जब सोने की दृष्टि से देख रहे हैं तो उस वस्तु में वो बंगड़ी वाली डिजाइन है कि चली गई? हमारी दृष्टि में नहीं दिख रही है, वस्तु में से गायब नहीं हुई। हम नजर कहां पर है हमारी? त्रिकाल निरूपाधि जो है, द्रव्य में से पर्याय गायब नहीं हुई है। देखो, पर्याय नहीं, पर्याय नहीं, पर्याय नहीं, ऐसे हम जब कहते तो ऐसा लगता है पर्याय कहीं अलोकाकाश में चली गई। शुभ भाव को भी अशुद्ध भाव कहा, अशुभ भाव को भी अशुद्ध भाव कहा, और जो पर्याय रूप शुद्ध भाव है, पर्याय रूप शुद्ध भाव यानी जिसको हम स्वभाव पर्याय कहते हैं, वितराग पर्याय कहेंगे, जो क्षायिक भाव कहो, कोई भी जो शुद्ध भाव है वो पर्याय रूप शुद्ध भाव है। परंतु ये त्रिकाल स्वभाव कैसा है जिसको परम पारिणामिक भाव कहते हैं, वो त्रिकाल शुद्ध ही है। अब सोना है 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 है, अभी सोना की बंगड़ी, फिर वो उसको निकाल कर हमने कुंडल बनाया, हार बनाया, कुछ कुछ बनाते गए, तो ये पर्याय तो बदलती गई, परंतु हम पर्याय का लक्ष्य छोड़कर मात्र सोना इस दृष्टि, ये दृष्टि यानी ये श्रुत ज्ञान की अपनी कमाल है कि एक को गौण करके एक को देखें, और इसी विशेषता के द्वारा हम आत्मा को पकड़ सकते, क्योंकि पर्याय मात्र का यहां लक्ष्य छोड़कर जो त्रिकाल कायम रहने वाला ऐसा जो स्वभाव है उसका लक्ष्य करना है। देखो, द्रव्य तो अखंड होता है, उसमें पर्याय से विरहित कभी द्रव्य होता ही नहीं है। अभी यहां जिस द्रव्य की बात कर रहे हैं वो द्रव्य यानी तत्व की बात कर रहे हैं, यानी वो तो त्रिकाली जो कायम रहना है, जो ध्रुवता जो है, उत्पाद व्यय और ध्रुव है। अब उत्पाद और व्यय को हम अपनी दृष्टि में गौण करते हैं और हम मात्र ध्रुवता की दृष्टि करते हैं। ये जो ध्रुव रहने वाला, त्रिकाल कायम रहने वाला, उसको हमने शुद्ध कहा। देखो, शुद्ध कहने के दो प्रकार होते हैं, एक पर्याय की अपेक्षा शुद्ध और अशुद्ध। अब संसारी पर्याय को हम अशुद्ध कहेंगे, सिद्ध पर्याय को शुद्ध कहेंगे समझाने के लिए, और एक त्रिकाल शुद्ध जिसको सामान्य कहते हैं, वो सामान्य की अपेक्षा सारे विशेष वो अशुद्ध हो जाएंगे। देखो, पर्याय में दो प्रकार हुए, शुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्याय, यानी शुभ अशुभ दोनों अशुद्ध में आ गए। सुनना बराबर, पर्याय की अपेक्षा शुद्ध अशुद्ध करते तब एक शुद्ध पर्याय और एक अशुद्ध में शुभ और अशुभ दोनों आ गए। अब जब त्रिकाली को शुद्ध कहेंगे तो सारे ही शुद्ध अशुद्ध सभी पर्यायों को अशुद्ध में डालेंगे, विकारी विकारी विशेष कार्य कहेंगे उसको, पर्याय रूप कहेंगे। सारे पर्याय है ना, क्योंकि त्रिकाली की नजर किसे हमको देखना है, तब ये शुद्ध पर्याय हो, शायिक भाव हो, औपशमिक हो, शौपशमिक हो या औदयिक हो, सारों को ही हमने अशुद्ध में डाल दिया। हाँ, जो कुछ है वो है, मगर समझाए कैसे? समझाने के लिए ये तो समझाने के लिए उसको पहले ऐसा पिछले ये द्रव्य है, ये गुण है, ये पर्याय है, ये शुद्ध भाव है, ये अशुद्ध भाव है, समझाएंगे ना? पहले तो आत्मा है, चलो जानो आत्मा को, ऐसे तो नहीं जानेंगे। तो पहले समझाने के लिए तो दो द्रव्यों की एकता भी करके बताएंगे कि ये एक इंद्रिय जीव है, ये दो इंद्रिय जीव है, तीन इंद्रिय जीव है, क्योंकि समझते नहीं जीव है कहाँ, वो पता नहीं है। संयोग की अपेक्षा पहले ज्ञान कराएंगे। ये जो हमने जीव कांड में 20 प्ररूपना देखी है, एक इंद्रिय जीव, इतने इंद्रिय वाला है, इतने काय वाला है, इतने योग वाला है, ये जो बातें देखी थी हमने उसमें, तो उसमें तो पहले तो संयोगों के द्वारा उसको जीव को पकड़ा नहीं जाना। फिर उसमें जीव भिन्न है और वो कर्म भिन्न है, उसके देह भिन्न है, सारे भिन्न है। फिर अकेले जीव को जब हमने देखा तो फिर भी उसको जानना कैसे? तो ये उसमें इतने गुण है, इतने पर्याय है, ये उसका स्वरूप है, उसका लक्षण है, ऐसा सारा समझाया। उसमें भी विभाव पर्याय है, स्वभाव पर्याय है, बहुत सारी है। तो अभी उन पर्यायों का भी लक्ष्य छोड़कर जो कायम रहने वाला तत्व है, देखो जो बदलता है उस पर अगर हम नजर रखेंगे तो हमको कोई ना कोई वहां विकल्प उत्पन्न होगा, राग उत्पन्न होगा, और अपने को तो निर्विकल्प की प्राप्ति होनी है। तो जो कायम रहता है एक सदृश जो है, उसको देखने से क्या होगा? न राग होगा न द्वेष होगा, ख्याल आता है ना? इसलिए पर्याय का लक्ष्य छोड़कर त्रिकाली का लक्ष्य करना है। परंतु वो जो पूरा द्रव्य गुण पर्यायात्मक जो द्रव्य है, उसमें से पर्याय कहीं चली नहीं गई, ख्याल आता है ना? ये महत्व की बात है। ये सारे दृष्टि का कमाल है। अभी दर्पण के सामने जाते हैं, जब आप प्रतिबिंब को देखते हैं तो दर्पण में तो बहुत सारे प्रतिबिंब है, पीछे के अपने पीछे के सारे वस्तुएं सामने दिख रही है। तो आप सुबह उठ के किस किस को देखती हो? जिसको हमने मेरा चेहरा वहां दिख रहा है, ऐसा नहीं कि मेरा प्रतिबिंब, ऐसा भी नहीं, ये मेरा चेहरा है ना? तो उसमें तो बहुत सारी चीजें झलक रही है, उनको हम गौण कर देते। ऐसा नहीं सामने जाके बताते अभी ये गौण है, वो गौण है, वो गौण है, वो गौण है। अगर ऐसा कहेंगे तो उसी को मुख्य हुआ वो। ऐसा नहीं कहते कि कपड़े पीछे से कोई कपड़ा दिख रहा है वो गौण है, ये और कोई पीछे की दीवार भी दिख रही वो भी गौण है, पीछे कोई कैलेंडर झलक रहा है वो भी गौण है। यदि ऐसा कहते हैं तो लक्ष्य किसका हो रहा है? उन अन्य प्रतिबिंबों का। तो जब हम अपने को देखते हैं तो दूसरे अपनी नजर में आते ही नहीं है। अगर बाद में पूछेगा कोई आपको कि मिरर में किस किस का प्रतिबिंब था, क्या पता, हमने तो अपना मुंह देखा खाली, ख्याल है ना? इसको कहते गौण किया। वैसे हम अभी ध्यान करने को बैठे, मैं शरीर नहीं हूं, मैं कर्म नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, किसका लक्ष्य किया? हाँ, जे नहीं हूं उसका लक्ष्य हुआ। हाँ, मैं ये पर्याय नहीं हूं, मैं वैसा नहीं, ये क्या नहीं हूं किसने पूछा है? जब जिसको जानना है उसको जान लिया तो ये नहीं हूं उसमें आ गया। ये कमाल है इसकी। हाँ, पोते छो ने अंदर प्रतिबिंब ने किया त्या सवाल छे। देखो ये सबको कौन जान रहा है, सबको कौन जान रहा है? हर समय वो स्वयं ख्याल में आ रहा है, इसको मैं जान रही हूं, इसको मैं जान रही हूं, इसको मैं जान रही हूं। ये मैं तो हर चीज के साथ लगा हुआ है। अभी जैसे मैंने वहां देउल राव गांव में वहां उदाहरण दिया था, हम रोज घूमने जाते थे वहां, ऐसा छोटा ऐसा ओढ़ा जिसको कहते हैं नदी छोटी सी, उसका पानी इतना संत था कि उसमें वो सारा चांद भी दिखे, वो या चांदनी दिखे, उसमें अंदर झाड़ पेड़ बीड़ सारे दिखते थे। तो मैंने बोला हम जा रहे थे और देउलगांव राजा में ऐसा है कि जमीन के अंदर मुझे सब दिखने लगे, क्या चांदनी चांद वो सारे पेड़ बीड़ सब अंदर जमीन में दिखने लगे। तो क्या ये सच है? तो ये वहां दिख रहा है उसका अर्थ क्या? वहां पानी है, वहां कोई तो रिफ्लेक्ट करने वाली चीज है ना नीचे, इसीलिए तो दिख रहा है वहां। तो वहां दिख तो रहा है चांद और चांदनी, और उससे हमने क्या बराबर नक्की किया कि यहाँ पानी होना चाहिए। अब उस हमको उसको पानी जानना है तो पहले चांद और चांदनी को हटाना पड़ेगा। वो तो उसकी रिफ्लेक्टिविटी उसका स्वभाव है। वैसे हमको आईना देखना है, उसका निर्णय करना है दर्पण का कि यहाँ दर्पण है तो पहले सारे प्रतिबिंब हमको हटाना पड़ेगा। हटेंगे वो प्रतिबिंब, हट जाएगा तो ये दीवार बन जाएगी, उसको दर्पण कौन कहेगा? ख्याल आता है ना? तो ये जो हम जान रहे हैं, ये जानना 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 चल रहे हैं, तो ये कहाँ कौन किसकी उपस्थिति में चल रहा है ये सारा ज्ञायक की? तो जानना तो चलेगा, पर्याय तो वहां रहेगी। वो पर्याय को रहते हुए भी जो जानन रूप स्वभाव है उसकी दृष्टि करनी है, यानी रिफ्लेक्शन को नहीं जानना है, रिफ्लेक्टिविटी को जानना है। वो रिफ्लेक्टिविटी अभी जब रिफ्लेक्शन तो रहेगा ही वहां, वो रहते हुए भी क्या जान रहे उसका लक्ष्य करते हम हर समय में क्या जानने में आ रहा है, क्या जानने में आ रहा है, क्या जानने में रहा है, परंतु कौन जान रहा है, कौन जान रहा है, कौन जान रहा है, ऐसा करो। अभी क्या जानने में आ रहा है उसमें तो हर समय अलग अलग उत्तर होगा उसका। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। अभी पूछो कौन जान रहा है, कौन जान रहा है, कौन जान रहा है, तो मैं जान रही हूं, मैं जान रही हूं, मैं जान रही हूं। तो जानने वाला एक है ना, उसका स्वरूप तो एक है। तो ये त्रिकाल निरुपाधि की बात चल रही है, उसका स्वभाव तो कभी नहीं चेंज होगा, पर्याय हर समय चेंज होती रह जाएगी। और यहां तो शुद्ध पर्याय को भी वो गौण करके, पर्याय तो रहेगी द्रव्य में हमेशा, फिर वो त्रिकाली का लक्ष्य करने की दृष्टि से वो है ही नहीं ऐसा कहेंगे। ये तो भाषा को सीखना पड़ेगा। ये कोई भोला जो अरे पर्याय विरहित द्रव्य को हमको जानना है। हुकुमचंद भारी ऐसे उदाहरण देते हैं, वो घोड़े के पानी पीने के लिए हौद होता है ना, या नदी पर ले जाते हैं, तो नदी पर ले जाते तो क्या है उसमें उसका अपना मुंह दिखता है घोड़े को, तो वो ऐसा बिथर जाता है। तो चाहता है कि यहाँ घोड़े का मुंह नहीं दिखे और मुझे पानी पीने को मिले, तो ऐसा कभी होगा? तो वो उसका मुंह भी दिखेगा और उसको पानी भी पीना पड़ेगा। तो वैसे वहां पर्याय भी होगी और फिर भी त्रिकाली का लक्ष्य करना है। सब अभी ज्ञान शून्य हो जाए ज्ञेयों से और फिर मैं ज्ञायक बना रहूंगा, ऐसी किसी की मान्यता हो तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। देखो यहां है ना नीचे का पैराग्राफ, एवा शुद्ध जीवास्तिकाय ने, शुद्ध एटले पवित्र जीव, अस्थि ने छे और काय एटले प्रदेशों समूह। तो शुद्ध जीवास्तिकाय एटले जीव असंख्य प्रदेश ना समूह रूप अस्तित्व वालो छे। अहीं कहे छे के त्रिकाल निरूपाधि जीव ने खरेखर विभाव स्वभाव स्थानो नथी। खरेखर ने निश्चय थी त्रिकाली की दृष्टि से उसमें विभाव स्थान है ही नहीं है। शुभ अशुभ राग रूप विभावना प्रकार तेनामा नथी। सारे ही हमने पर्याय को निकाल दिया है, निकाल दिया ने भी गौण कर दिया है। दया दान व्रत पूजा भक्ति काम क्रोध आदि बधा शुभाशुभ भाव विभाव छे ने ते विभाव स्वभावना भेदो द्रव्यमा नथी। द्रव्य तो एक सदृश है, ध्रुव को लिया ना हमने, उत्पाद वे वाली ये सारे है विकार, उत्पन्न होने वाले और नष्ट होने वाले, इन सबको हम है ही नहीं कहेंगे, द्रव्य में है ही नहीं। केम के द्रव्य तो निर्विकल्प छे, निर्विकल्प एटले भेद रहित, विकल्प एटले भेद, उसमें ये पुण्य भाव ये पाप भाव ऐसा कोई उसमें भेद है ही नहीं है। तो ध्रुव रूप ये जो उत्पाद वे वाले जो परिणाम है उसमें भेद है, अलग अलग है वो।
हेलो, देखो यहाँ तो ये बात बताई जा रही है, देखो विशेष रूप से अपने ख्याल में आनी चाहिए। पहले तीसरी लाइन में लास्ट वर्ड है शुभ और अशुभ रूप विभाव। देखो क्या कहते हैं, शुभ भाव को भी विभाव भाव कहा गया है, जो हमें मानने में बहुत तकलीफ होती है। वो कोई तो ऐसा भड़क उठता है कि क्या शुभ भाव भी नहीं करना,
अरे करने की बात नहीं, वो विभाव है ये समझने की बात है। पहले अभिप्राय में तो ले कि भाई शुभ परिणाम भी विभाव भाव है, वो मेरा स्वभाव भाव नहीं है, इसलिए और इतना ही बोल के रुके नहीं है। वे कहते हैं कि शुभ अशुभ रूप राग रूप विभाव ना प्रकार तेना मनते, यानी ये जो दो प्रकार है शुभ और अशुभ, तो क्या क्या होते हैं? तो दयादान व्रत भक्ति, व्रत पूजा भक्ति, ये जो है वह तो शुभ भाव है, और जो काम क्रोध आदि यानी राग द्वेष वगैरह बधा, तो वो तो अशुभ भाव है। इन सबको उन्होंने बताया शुभाशुभ भाव विभाव छे। देखो बहुत लोगों को ऐसा नाराजी होती है कि भाई भाई शुभ भाव को तो जरा छोड़ो, शुभ भाव को भी आप विभाव कह रहे हैं तो हम क्या करें, ना अशुभ भी करें ना शुभ करें तो क्या करें। वही तो आचार्य देव कहना चाहते हैं, इन दोनों के अलावा एक जो शुद्ध भाव है, जो तेरा शुद्ध स्वभाव है, उसमें अगर तू एक हो जाए, स्थिर हो जाए, तो जो पैदा होगा वह तो शुद्ध भाव ही होगा और वही करने लायक है, वही तेरा स्वभाव भाव है जो पर्याय में प्रकट करना है। ये बात बहुत कठिन लगती है कि भाई शुभ और अशुभ दोनों को विभाव कहना और मानना, कहना तो जरा तकलीफ वाली है, मानना तो उससे भी तकलीफ वाली है, लेकिन उसको हम ऐसे अभिप्राय में लिए बिना अपना काम एक इंच भी आगे नहीं चलता है। हाँ बताइए अभी।
आगे 53 पेज पर आए ना। हाँ हाँ, आ वात तो द्रव्य ने पर्याय वच्चे नी छे, पर्याय मां जे छे द्रव्य मां नथी, ने द्रव्य मां जे छे ते पर्याय मां नथी। यहां त्रिकाली जो परम पारिणामिक भाव है उसी को द्रव्य कहा है, और पर्याय को अलग बात, क्योंकि ये दोनों की भिन्नता बताए बिना उसका लक्ष्य नहीं छोड़ रहे ना हम, बार बार पर्याय पर ही लक्ष्य जा रहे हैं और पर्याय रूप ही अपने को मानते। थोड़े दया के परिणाम आए हम, थोड़ा शुभ भाव आ गए तो हमने अपने को बड़ा मानने लगे, अपने को उस रूप ही मानते। अभी हम इतना स्वाध्याय करते, पहले नहीं करते थे और अभी करने लगे, तो इतना तो शुभ भाव हुआ ना, इतना तो अपने में बढ़ोतरी हुई ना, इतने तो हम बढ़ गए ना, तो हमने अपना एकत्व किससे किया? उस शुभ भाव से किया। तो यहाँ तो बता रहे ये त्रिकाली स्वभाव ये कोई है ही नहीं, ये शुभ भाव जाना किसने? अपने में अभी यहाँ आके बैठे हैं, तो यहाँ अपने भाव इस सुनने में लगे हैं कि घर के विचार चल रहे हैं, शुभ भाव है कि अशुभ भाव है ये जाना किसने? अपने भाव अपने को पता चल रहे हैं ना कि अपने में क्या विचार चल रहे हैं, तो ये जानने वाला मैं हूं उसको लिया यहां, वो त्रिकाल ज्ञायक स्वभाव को लिया यहां, जानने वाली एक पर्याय को भी नहीं लिया, यानी जानन जानन जो एक एक पर्याय है उसको भी छोड़ दिया यहां। पहले आई थी जीवादि सात तत्वों को जानने वाली पर्याय को भी यहां अपने से अलग रखा, क्योंकि वो भी पर्याय रूप भाव है। तो क्या कहते हैं, जो पर्याय में है वो द्रव्यमान नहीं है, और जो द्रव्य में है वो पर्याय में नहीं है। राग द्वेष पुण्य पाप संकल्प विकल्प आदि विभाव तेनी दशामा छे पन वस्तुमा नथी। राग द्वेष पुण्य पाप तो समझे, परंतु संकल्प विकल्प रूप जो मन का जो चल रहा है उसी को कोई कोई आत्मा का अनुभव मान लेते, मैं शुद्ध हूं बुद्ध हूं ऐसे संकल्प किए और शांति से बैठा रहे तो हम आत्मस्थ हो गए उस दिन बात किसने, तो वो भी विकल्प है, आत्मा संबंधी के विकल्प चल रहे। ये तो हम जोर से पढ़ रहे, वो तो स्वाध्याय कहलाएगा, और वो अंदर की अंदर मन ही मन में वो शब्द रूप रचना होती है, उसको अंतर्जल्प कहेंगे हम, मगर वो भी स्वाध्याय है, वो ध्यान नहीं है। क्या क्या, क्योंकि विकल्पात्मक चल रहा है ना, वो विकल्पात्मक ध्यान कह सकते हैं उसको, तो वो भी विभाव तेनी दशा, उसको भी विभाव कहा है, और वो किसमें है, अवस्था में है, पर्याय में है, दशा में है, पण वस्तुमा नथी, वो है ही नहीं कि नहीं कहा यहाँ, दयादान के भाव है ही नहीं नहीं कहा, वस्तु में नहीं है ऐसा कह रहे। बार बार क्या बात हो रही है, अभी सोने की बंगड़ी जो, ये बंगड़ी रूप अवस्था है ही नहीं कहा, सोने में नहीं है ऐसा कहा, वैसे जो त्रिकाली की बात यहां चल रही है उसमें ये भाव नहीं है। त्रिकाल निरूपाधि रूप भगवान आत्मा मां विभाव के वो वड़ी जोयू विभाव स्वभाव कहो छे पाठ मां तेने इतले विभाव ने स्वभाव कहो छे नो खलु स्वभाव ठाणा एने खरेखर तो स्वभाव स्थान नहीं है ऐसा कहा उन्होंने एम पाठ मां लीधु छे तो विभाव ने पन स्वभाव कहवाय छे क्यों कहा ऐसा केम के ए द्रव्यना पर्यायनो भाव छे ने स्वभाव विभाव को क्या कहा अपना भाव द्रव्य में है ना वो वस्तु यहां द्रव्य और वस्तु ऐसे दो द्रव्य भी दो अपेक्षा से द्रव्य कहा एक गुण पर्याय वाला द्रव्य और एक ध्रुव वाला द्रव्य तो वो ध्रुव वाले द्रव्य में ये पर्याय रूप अंश नहीं है इसलिए ये विभाव को स्वभाव कहा है तो स्वभाव यानी स्व की पर्याय है पर्याय में है ना वो अपनी पर्याय है तो क्या कहते हैं पोतानो भाव छे ने मिथ्यात्व राग द्वेष आदि तेना पर्याय नो अवस्थानो भाव छे छता ए वस्तु मां नथी वस्तु किसको कहा ये त्रिकाल जो परंपरा में ध्रुव जो है उसको वस्तु कहा केम के वस्तु निर्विकल्प तत्व छे अने तेने अहीं शुद्ध भाव कहेवामां आवे छे ये शुद्ध भाव वाला जो भाव है वो त्रिकाली भाव अब ये विकारी भाव कहा वो पर्याय वाला भाव अवस्था वाला भाव वो सारा अनंत गुण स्वरूप पूरा अखंड जो त्रिकाल कायम रहने वाला वो सब उसमें आ गया आत्मा के अनंत गुण सारे धर्म उसमें आ गए विभाव नहीं आएगा वैभाविक शक्ति आएगी
देखो वैभाविक शक्ति भी निरंतर शुद्ध ही परिणाम रहती है गुण शुद्ध ही है लेकिन जब जब यह जीव पर में जुड़ जाता है तो वह विभाव शक्ति जो है मतलब विभाव शक्ति नाम का जो गुण है वह उसके निमित्त से जीव विभाव रूप परिणमता है ऐसा कहने में आता है लेकिन वो विभाव शक्ति जीव को विभाव रूप परिणाम आवे ऐसी बात है नहीं विभाव शक्ति इटसेल्फ शुद्ध है पर्याय में वह अशुद्धता निमित्त रूप से होती है ऐसे देखा जाए तो गुण तो हम उसी को कहेंगे कि जो निरंतर यानी द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्था में रहे उसको गुण कहते हैं तो वो वैभाविक गुण सिद्ध जीव में भी है उसके कारण जीव विभाव रूप परिणमता है ऐसा नहीं जब जीव स्वयं के मोह रग द्वेष या अज्ञान के कारण परिणमता है तो उसमें वह निमित्त है वैभाविक गुण जिसको हम वैभाविक शक्ति कहते हैं बात ख्याल में आ गई डॉक्टर साहब
अभी हमने पानी का उदाहरण लिया था देखो देखो अभी हमने पानी का उदाहरण दिया था पानी का स्वभाव शीतल है और पानी में ऐसी योग्यता है कि वो गर्म हो सके बराबर वो एस्बेस्टोस तो नहीं गर्म होता है उसमें तो ऐसी शक्ति नहीं है पानी में है तो उस योग्यता को हम वैभाविक शक्ति कहें तो वैभाविक शक्ति ऐसा इसका अर्थ ऐसा नहीं उसको विभाव परिणमन करना पड़े उसमें ऐसी योग्यता है बस इतना ही बताता है अब जो ठंडा पानी है उसमें वो योग्यता पड़ी है कि नहीं अंदर वो क्या कार्य कर रही है वो बस योग्यता बताती है उसको वो भी स्वभाव रूप परिणमन चल रहा है उसको शीतल रूप परिणमन चल रहा है उसका परंतु पानी में ऐसी योग्यता है कि वो गर्म हो सके अग्नि के संयोग में विशिष्ट नियम वो तो पर्याय में होता है ना ख्याल है देखो इसी तेने अहीं शुद्ध भाव कहेवामां आवे छे लो प्रत्येक गाथामां आवी वात छे अत्यार सुधी जे सांभळ्युं हतुं तेमां आवो एक वाक्य पण कोई दी सांभळ्युं हतुं क्योंकि ये नियमसार में खास बात और ये अपने लिए उन्होंने लिखा है कुनकुंदाचार्य ने पंचास्तिकाय में तो पांचों अस्तिकाय द्रव्य और छह द्रव्यों की बात की उन्होंने प्रवचन सार में तो ज्ञान प्रधान कथन चल रहा है समय सार में दृष्टि का विषय ने आत्मा का अनुभव मैं कौन हूँ किसमें अपनत्व स्थापन करना उसकी बात आई और ये नियम सार तो ऐसा अलौकिक है तो बिल्कुल पर्याय मात्र से अपने को जैसे वो है ही नहीं इसी बात करेंगे आप। अपेक्षा से बात होगी, वो अपेक्षा समझना, नहीं तो कहेंगे वो तो प्रवचन सार वाले तो विभाव को भी अपना इसमें लिया, द्रव्य में शामिल कर लिया विभाव को भी। ये जब क्रोध रूप परिणमता है तो आत्मा क्रोध है, आत्मा को क्रोध का, तो ये अलग अलग जगह अलग अलग अपेक्षा, क्योंकि प्रयोजन क्या है उसका लक्ष्य छुड़ाना है। प्रवचन सार में क्यों उसको लिया, क्योंकि वो अपनी पर्याय में होता है इसको जानना है पहले। ज्ञान तो सबको जानता है, त्रिकाली को भी जानेगा, पर्याय को भी जानेगा, परद्रव्य को भी जानेगा, और श्रद्धा जो स्व जो त्रिकाली है उसमें अपनत्व करेगी। जब जानकर अभी उसको छोड़ा है तो वो है ही नहीं कहेंगे हम, वस्तु में है ही नहीं। तो ये अपेक्षा से बराबर उसको समझना कि कौन सी अपेक्षा से आचार्य, और वो एक बात अच्छी है कि एक ही आचार्यों ने ये सारे ग्रंथ लिखे। यदि अलग अलग आचार्य लिखते तो हम उनमें भी झगड़ा लगा देते, पंचम काल के जीव है ना हम, पक्ष तैयार हो जाता है, ये हम इस पक्ष वाले वो पक्ष वाले, वो निश्चय वाले वो व्यवहार वाले। हाँ हाँ, विभाव स्वभाव स्थानो एवी भाषा छे ने, तो तेनो अर्थ ए छे के विभाव रूप स्वभावना प्रकारो एटले भेदो, अलग अलग जो प्रकार है विभाव के उसको कहते भेद, और उसी को कहते स्थान। असंख्य प्रकार ना शुभ भाव, दया दान पूजा भक्ति आदि बधा शुभ भाव पण विभाव भाव छे, उसके असंख्यात प्रकार होते हैं, अलग अलग डिग्री, किसी को थोड़ा शुभ भाव, किसी को ज्यादा है, किसी को दया का है, किसी को दान का है, किसी को यात्रा का है, किसी को पूजा का है, और अलग अलग किसी को स्वाध्याय का है, तो ये शुभ भाव के भी असंख्यात प्रकार है। उपवास करू एवो जे विकल्प उठे छे ते पण पूर्णपणे विभाव भाव छे। और उपवास वो क्या है और एकासन क्या है, किसका विभाव, मैंने क्या पूछा, एकासन क्या है, देखो एकासन करने का भाव नहीं मैंने पूछा, एकासन क्या पूछा, उपवास क्या है, शुभ भाव है कि अशुभ भाव है, मिलिंद भाई को बोलने दो, उपवास क्या है, वो नहीं वो भोजन छोड़ दिया वो वाला, हाँ जड़ की क्रिया है वो, ना शुभ भाव है ना अशुभ भाव है। उपवास करने का जो राग है जो भाव है वो शुभ भाव है, वैसे एकासन कुछ नहीं है, ना शुभ है ना अशुभ है, एकासन करने का जो भाव है वो शुभ भाव है। यहाँ क्या लिखा है, देखो उपवास को नहीं शुभ भाव का, हाँ विकल्प, उपवास करू एवो जे विकल्प उठे छे ते पण पूर्णपणे विभाव भाव छे, यहाँ शुभ अशुभ दोनों को विभाव में डाले ना, अने एवा विभाव स्वभावना भेदो निर्विकल्प अभेद एवी चैतन्य मूर्तिमा नथी, वहां तो उसको भेद कहा, विकारी भावों को भेदों में डाला, वो अलग अलग होते अलग अलग जाति के और बदलते रहते हैं और एक समय मात्र टिकते हैं, तो ये भेद रूप हो गए। और अपना ध्रुव स्वभाव कैसा है, निर्विकल्प है, अभेद है, अखंड है, उसमें कोई भेद नहीं है, एक जैसा कायम अनादि से अनंत काल तक, तो निर्विकल्प अभेद एवी चैतन्य मूर्तिमा नथी। समय हो गया, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ। डॉक्टर सलाह।